समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो आकर्षिता, हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल लिसनर्स ट्यून्ड इन टू परिक्रमा 100.1 एफएम। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय, विद मी टुडे इज माय को होस्ट आकर्षिता एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेडलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। We begin with the news headlines first. Government says domestic LPG supply across the country smooth, no dry out at any distributor.
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार तेज, विभिन्न पार्टियों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू एंटरटेन प्ली अगेंस्ट डिलीशन ऑफ नेम्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल वोटर लिस्ट इन SIR, टर्म्स इट प्रीमैच्योर।
भारत ने सार्क मुद्रा अदला बदली ढांचे के तहत मालदीव के लिए 3000 करोड़ रुपए की पहली निकासी को मंजूरी दी।
नो कोर्ट कैन कंपेल वुमन स्पेशली माइनर टू कैरी प्रेगनेंसी अगेंस्ट विल, सेज SC।
मौसम विभाग ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में लू चलने का अनुमान व्यक्त किया।
एंड इन IPL क्रिकेट, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टू टेक ऑन गुजरात टाइटन्स इन बेंगलुरु दिस इवनिंग। And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about National Panchayati Raj Day.
देश में आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन स्थानीय स्वशासन की औपचारिक संरचना के रूप में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। ये 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन का प्रतीक है जो 1993 में लागू हुआ था।
टुडे वी आर डाइविंग इनटू समथिंग दैट क्वाइटली शेप्स मिलियंस ऑफ लाइव्स अक्रॉस इंडिया। द पंचायती राज सिस्टम साउंड्स फॉर्मल राइट, बट इज डीपली कनेक्टेड टू एवरीडे लाइफ।
पंचायत व्यवस्था भारत की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक परंपराओं में से एक है और लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है। पंचायतें ग्रामीण विकास, शासन प्रशासन, सामाजिक न्याय, आपदा प्रबंधन से लेकर सांस्कृतिक संरक्षण में अहम भूमिका निभाती हैं। पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा पंचायतें हैं जिनमें 24 लाख से ज्यादा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। पंचायती राज जमीनी स्तर के लोकतंत्र और सहभागी शासन की भावना का प्रतीक है। पंचायतें ये सुनिश्चित करती हैं कि ग्राम स्तर पर निर्णय लेने में जनता की आवाज सुनी जाए।
And here's something really inspiring. Almost half of these representatives, around 49.75% of women, and that's a huge step towards inclusive governance.
जी, महिलाएं ना सिर्फ हिस्सा ले रही हैं, बल्कि अपने समुदाय के लिए बड़े फैसले भी ले रही हैं। और अभिषेक, वास्तविकता में यही महिला सशक्तिकरण भी है।
Exactly, but let's make this more relatable. Think about a village where a hand pump breaks down. Earlier, people had to wait and wait for approval from distant offices.
और कभी-कभी उन मंजूरियों में तो मानो सदियां लग जाती हैं। इस बीच रोजमर्रा की जिंदगी अस्त-व्यस्त हो जाती है, ना पानी मिलता है और ना ही तुरंत कोई समाधान। इसलिए जमीनी स्तर पर पंचायतों का होना बेहद जरूरी हो जाता है।
Yes, but with the Panchayati Raj system, things have changed. Decisions are now made locally. The village leaders can step in and fix the issue much faster.
ड्रेनेज सिस्टम बनाने या स्कूल की क्लासरूम की मरम्मत करने के मामले में भी यही बात लागू होती है। ये सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं है, ये सीधे तौर पर स्वास्थ्य, शिक्षा और गरिमा पर असर डालता है।
एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ ब्रिंगिंग गवर्नेंस क्लोजर टू द पीपल, इज नॉट जस्ट अबाउट पॉलिसीज, इज अबाउट सॉल्विंग रियल प्रॉब्लम्स इन रियल टाइम।
इसके अलावा ये लोगों को अपनी बात रखने का मौका देते हैं। और अभिषेक, जब समुदाय के फैसले जो है वो समुदाय के लोगों के द्वारा ही लिए जाते हैं, जब उनकी कम्युनिटी ही आपस में एक तरीके से निर्णय लेती है, आपस में सोच विचार करती है, क्योंकि वो उस समस्या से गुजर रहे होते हैं, तो वो उस समस्या का बेहतर समाधान निकाल सकते हैं। तो हर किसी को उनमें हिस्सा लेने, सवाल पूछने और योगदान देने का अवसर भी मिलता है।
Absolutely right, Akarshita, what you're saying, because everyone has their say. And so in a way, Panchayati Raj isn't just administration, it's democracy. You can actually see and feel. It empowers people socially and politically, making them active participants rather than passive observers.
जी हाँ, यही है असली लोकतंत्र, बिल्कुल जमीनी स्तर पर। इस पर और जानकारी साझा कर रही हैं हमारे संवाददाता।
Panchayati Raj institutions form the backbone of country's grassroots democracy and have deep historical roots in village self-governance. The power is transferred from central and state governments to elected representatives at the village level. With over 2.5 lakh panchayats and over 24 lakh elected representatives, local governance has become more inclusive. In recent years, digital initiatives such as e-Gram Swaraj, Meri Panchayat, Panchayat Nirnay, Audit Online, Swamitwa and Gram Urja Swaraj have strengthened transparency, efficiency and accountability in local administration. Over 95% of villages now have 3G and 4G connectivity, strengthening last mile service delivery. With Dibendra Kumar, Vishnu PS, Akashwani News, Delhi.
केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि गांवों, किसानों, पंचायतों और व्यापक ग्रामीण परिवेश के समग्र विकास के बिना विकसित भारत का सपना साकार नहीं हो सकता। उन्होंने आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री बघेल ने कहा कि राष्ट्रीय प्रगति के लिए जमीनी स्तर पर समावेशी विकास अत्यंत आवश्यक है।
He also noted that the government has undertaken substantial efforts to improve efficiency and governance delivery. And the minister noted that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the benefits of various government schemes are increasingly reaching the grassroots. Mr. Bagel added that mechanisms such as direct benefit transfer, DBT, have ensured that assistance is delivered directly to beneficiaries, enhancing transparency and reducing leakages.
और आइए अब बात करते हैं और समझते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं का असली लक्ष्य क्या है और वे क्यों बनाए गए हैं।
Yes, right, because it's not just a system, it's driven by some powerful goals. First up, people's participation. Panchayati Raj ensures that villagers don't just sit back, they actively take part in planning and implementing development programs. So instead of decisions being made far away, people themselves decide what their village really needs.
और ये हमें दूसरे लक्ष्य की ओर भी ले जाता है, जवाबदेही। स्थानीय प्रतिनिधि सीधे तौर पर समुदाय के प्रति जवाबदेह होते हैं। इसका मतलब ये है कि बड़े बड़े दफ्तरों या लंबी चौड़ी आदेश श्रृंखलाओं के पीछे छिपने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अगर कुछ भी गलत होता है तो लोगों को ठीक ठीक पता होता है कि किससे सवाल करना है। और ये बिल्कुल सच है, जब नेता जवाबदेह होते हैं तो सेवाओं में भी सुधार होता है।
And that's the third objective, better efficiency and responsiveness, like quicker repairs, faster approvals and solutions that actually match local needs.
और यहाँ एक और जरूरी बात है, पंचायती सरकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने में मदद करती हैं, क्योंकि गांव को वहां रहने वाले लोगों से बेहतर और कौन समझ सकता है।
Absolutely.
स्थानीय संस्थाएं ये पक्का करती हैं कि योजनाएं सही लोगों तक सही समय पर पहुंचे।
And finally, one of the most impactful goals, inclusive development. Panchayati Raj promotes representation of marginalized groups, women, scheduled caste and scheduled tribes. It gives everyone a seat at the table, making development fairer and more balanced.
तो अभिषेक, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पंचायती राज सिर्फ शासन या प्रशासन के बारे में नहीं है, बल्कि ये भागीदारी, निष्पक्षता और सशक्तिकरण के बारे में है। ये एक ऐसा तंत्र है जहां हर आवाज मायने रखती है और हर समुदाय अपने भविष्य को खुद आकार देता है।
Yes, and today is National Oral Medicine and Radiology Day, celebrated annually on the 24th of April. It marks the establishment of the Indian Academy of Oral Medicine and Radiology in the year 1985. Our correspondent from Mumbai has filed this story related to some myths in dentistry and how one can prevent oral issues with daily care. Let's listen in.
It is said that a happy mouth is a happy mind, highlighting the strong connection between oral health and general well-being. But how does one maintain good oral health amid changing lifestyles, eating habits, and the scores of dental products available in the market luring consumers with white and shining teeth? To answer these questions, we spoke to Professor Dr. Sonali Khanna, Head of Department of Oral Medicine and Radiology, Nair Hospital Dental College, Mumbai.
We must brush twice daily for about 2 minutes. More frequent or forceful brushing isn't necessary. Be cautious with whitening products, especially in this era of marketing and gimmicks. Advertising gimmicks are on the roll, so all these substances are usually abrasive and can erode the enamel if overused.
Thus, maintaining good oral health results not just in happy smiles but also a healthy mind and body. So follow the doctor's advice and wear a smile, because your smile is a reason for many others to smile. Nisha Rani for Parikrama from Mumbai.
In Tamil Nadu, the voting percentage was historic yesterday, as both rural and urban turnout was huge. In Tirunelveli district, 77.94% of the voting was registered. And out of the 5 assembly constituencies, 3 constituencies registered 80%. Tirunelveli has registered 78.21%. In the Western Ghats of the district, live the Kani tribe who participated in this election. We have more from a correspondent.
For the Kani tribals living in the Western Ghats settlements of Tirunelveli, they had to walk as much as 20 km on foot to reach the Karayar polling station to cast their vote yesterday. After exercising their franchise, they had to walk back home. A total of 428 people from the Karayar, Chinnamayilar, Periyar Mayilar, Injikuri and Agastyar Kudirpu settlements are enrolled as voters at the polling station, which is located in the hills around 15 km from the Papanasam forest checkpost. Injikuri, where a total of 23 voters reside, they had to walk around 20 km away from the polling station. A centenarian from Injikuri visited the polling station to cast his vote. For every voter, exercising the power of democracy, it is precious for them. This is so true in the case of Kani tribals in Tirunelveli. The festival of democracy makes the people walk the mile because they have the power to vote and be proud as the citizen of the country. Joy Parikrama from Chennai.
और आइए अब जानते हैं कि हमारे लेह क्षेत्रीय संवाददाता के पास क्या खास है। तथागत भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष 29 अप्रैल को लद्दाख लाए जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
भगवान बुद्ध की आशीर्वाद स्वरूप इन पवित्र अवशेषों का दर्शन मिलना लद्दाख और विशेषकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए अत्यंत खास और सौभाग्य की बात है। इसके लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एवं अन्य समूह के माध्यम से तैयारियां की जा रही है। इसी उपलक्ष्य में 21 अप्रैल से लद्दाख के अधिकतर मठों में विशेष पूजा का आयोजन किए जा रहे हैं। पवित्र अवशेष 29 अप्रैल को ले पहुंचने के बाद 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा का विशेष आयोजन किया जाएगा। 2 मई से 15 मई तक आम लोग दर्शन कर पाएंगे। इस दौरान अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पर्यटन सचिव संजीत रोडगीस ने हमें बताया।
लद्दाख के लिए बहुत हिस्टोरिक इवेंट है और पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे रिलीजियस लोग, बहुत मॉन्क्स, नन्स, सब रिम्पोचेस और जो लोग हैं सब जुड़े हुए हैं एक साथ। इनका सेलिब्रेशन का बहुत सारा इवेंट्स इलेबरेट तरह से आयोजित हो रहे हैं।
तथागत भगवान बुद्ध की आशीर्वाद स्वरूप पवित्र अवशेष के दर्शन के लिए लद्दाख के लोगों के साथ साथ देश विदेश से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु लद्दाख पहुँचने की उम्मीद की जा रही है। परिक्रमा के लिए लेसे में बिस्किट डोलमा।
As the summer heat intensifies, the water scarcity becomes a pressing concern. Goa is turning to its past for answers, and across the state there is renowned focus on reviving the traditional lake system age-old water tanks that reflect the scientific knowledge of ancestors, and we have more from a correspondent.
South Goa celebrated a major milestone on Thursday with the inauguration of a new 10-ton per day gasification-based waste treatment plant at Sonsodo. This innovative facility, developed by GD Environmental Private Limited, utilizes advanced technology to process municipal waste into clean energy, effectively reducing the burden on local landfills. During the ceremony, the Chief Minister emphasized the government's commitment to a Swayampurna Goa, noting that over 1,000 crore rupees have been invested in modern infrastructure to keep the state pristine. The plant is designed to serve the constituencies of Madgaon, Fatorda and Kurtari, providing a sustainable technology-driven solution to waste management. Savan praised the move towards circular economy and encouraged citizens to partner with local municipalities to maintain the state's natural beauty. With real-time emission monitoring and high-tech processing, the Sonsoda plant stands as a bright symbol of Goa's dedication to environmental health and sustainable progress. For Parikrama, Mahesh Sopade, Panji.
Goa takes a significant leap towards a cleaner, greener future today as a state-of-the-art waste treatment facility opens at Sonsoda, and this new technology promises to transform how the region manages its resources. We have a report.
These structures, built centuries ago, were designed to harvest rainwater and recharge groundwater, ensuring year-round water availability. In Ponda, students are stepping beyond textbooks to study these systems during the ongoing Pani Pandravada or Water Conservation Fortnight, observed from April 16 to 30th. Educators say such field learning for campaigns like Catch the Rain helps build true water literacy going beyond awareness campaigns. One such educator, Subhash Jan, told Akashwani that
the lake systems were carefully constructed, taking into account land slope, soil type, and rainfall patterns. By channeling runoff from surrounding hills into these reservoirs, they ensured clean water storage and sustained irrigation during dry months.
Experts believe that reviving these traditional tanks is not just about preserving heritage, but a practical and scientific solution to today's water challenges. As Goa faces increasing pressure on water resources, these time-tested systems could play a key role in securing a sustainable future for generations to come. For Parikrama, Mahesh Sopade, Panji.
Government of India's Institute of Nano Science and Technology, INST, in Mohali has developed a new material which can detect the level of nicotine and cotinine in human body by fluorometric sensing. Fluorometric sensing is a technique that measures various parameters using fluorescent emission, and in the present case, the material which acts as a sensor lights up when it comes in contact with nicotine or cotinine. We have more from a Punjab correspondent.
Your smoking will light up to reveal your nicotine level. Yes, that's true. The sensor, when placed on skin of a smoker, it starts glowing faster to make detection of nicotine and cotinine very easy and quick as compared to current methods used for the same. With the new technique, even small amounts can be identified quickly and accurately, which is very important for healthcare and research. The material is an iron-based metal organic framework, which in simple terms is a tiny structure made from iron and organic molecules. This structure is extremely small, thousands of times smaller than a human hair, and have tiny pores that can trap and interact with other molecules. The INST scientist Monica Singh, who has developed this new technology with her research student Arshminder Kaur, told Akashwani that though this technique is still at in vitro stage, but has been found safe for use in biological systems. Experiments showed that it is biocompatible, meaning it does not harm living cells. Overall, this innovative material represents a promising step towards better health monitoring and a smoke-free society, as millions of people lose their lives due to disease caused by tobacco every year across the world. For Parikrama, this is Rajesh Bali from Jalandhar.
In Keralam, the beautiful beach town of Kovalam is witnessing a different kind of summer learning experience. It's unfolding one that blends creativity, culture and curiosity in equal measure. Let us listen more from a Thiruvananthapuram correspondent.
At the Kerala Arts and Crafts Village, Kovalam near Thiruvananthapuram, the Kalabila summer camp is offering children a lively mix of immersive sessions that go far beyond the usual holiday routine. Each day here is filled with activities from puppetry and theatre workshop to pottery and music and even the ancient martial arts of Kalaripayattu. Guided by skilled artists and experts, these sessions give children a rare opportunity to learn directly from practitioners, making every experience both engaging and meaningful. One of the biggest attractions this year is the robotic workshop, where tradition meets technology in exciting ways. children are discovering how modern tools can complement age-old crafts, bridging the gap between heritage and innovation. Let's listen to them.
We couldn't even get time to get bored because there were so many games, including fashion show, that we could make our own dresses with eco-friendly stuffs. We had theater workshop and food workshop. Then we had DJ and foam party, and we even went to paddy field. And the children's ages in here are so friendly that I thought that they were my own brothers and sisters. It was so much fun in here.
As the camp continues, it stands out as a refreshing reminder that meaningful learning can happen when children create, explore, and experience the world with their own hands. Midhi M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल.
In a proud moment for Jammu and Kashmir, young Wushu sensation Jia Manhas has clinched gold medal at the prestigious Moscow Wushu Stars 2026 held in Russia. Jia's stellar performance on the international stage has brought immense pride to Jammu and Kashmir and the entire nation.
और आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा. ये मैच बेंगलुरु में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा.
And moving on to some business news, benchmark domestic equity indices declined over 1% today, extending the losing streak for the third straight session. The Sensex plunged 1,000 points to close at 76,664, while the Nifty shed 275 points to settle at 23,898.
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन.
24th April is the death anniversary of the revolutionary freedom fighter Ardhindu Dastidar.
In his early teens, Ardhindu left his family and became an active member of the Revolutionary Party of Chittagong under the able leadership of Master Das Surya Sen. Just a few weeks before the storming of the armory at Chittagong, he got severely burned due to an accident in manufacturing picric acid powder meant for high explosive bombs.
He had not fully recovered from his injuries when he joined the party that carried out the Chittagong Armory raid on the 18th of April 1930. When the revolutionaries fought the British in Jalalabad Hills on the 22nd of April, he received a deadly wound in his abdomen which rendered him unconscious.
On the next day of the fight, that is, on the 23rd of April, a small group of villagers climbed the top of the hill and found Ardhindu Dastidar in a precarious condition. He was taken to the Chittagong General Hospital.
He refused to tell how he received the wounds. He was as stern and unbending as a rock. Ardhindu struggled with death a few hours more, but finally succumbed to his injuries on the 24th of April 1930. Pays tribute to the brave son of the soil.
24th April is also the death anniversary of Rashtra Kavi Ramdhari Singh Dinkar. Ramdhari Singh was born in Begusarai district of Bihar. When Dinkar enrolled at Patna College in 1929, he became involved with the Indian Freedom Movement.
Dinkar was a part of demonstrations against the Simon Commission in Patna. Upon hearing the news of the death of Lala Lajpat Rai due to lathi charge by the British, the youthful mind of Dinkar became increasingly radical. This was also the time when he began composing poems filled with patriotism under the pen name Dinkar.
Astitvon ke anastitva mein, maha shanti ke tal mein, yah bansuri baji shunyasan ki samadhi nischal mein, o kampahin tere samudra mein jeevan lehar uthaun, o taan taan phan vyal ki tujh par main bansuri bajaun.
Dinkar wrote the poem Vijay Sandesh in honor of the Sardar Patel-led Bardoli Satyagrah.
To escape the wrath of the government, Dinkar's poems were published for some time under the pseudonym Amitabh on the 14th of September 1928.
Yes, and we're also remembering Sachin Ramesh Tendulkar, who was born on this day in 1973. He is an Indian former international cricketer who captained the Indian national team. Often dubbed the god of cricket in India, he is widely regarded as one of the greatest cricketers of all time. He holds several world records, including being the all-time highest run scorer in international cricket, receiving the most player of the match awards in international cricket, and being the only batsman to score 100 international centuries. And Tendulkar was also a member of Parliament Rajya Sabha by presidential nomination from 2012 to 2018.
महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को 16 नवंबर 2013 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहते ही भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न के लिए भी चुन लिया गया। वे इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुने जाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। और आज हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता मैक मोहन की जयंती है। वे मुख्य रूप से खलनायक के किरदार निभाने के लिए जाने जाते थे। मैकमोहन प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री रवीना टंडन के मामा भी हैं। मैकमोहन का असली नाम मोहन माखीजानी था। वे बचपन से ही अभिनेता नहीं बल्कि क्रिकेटर बनना चाहते थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश की क्रिकेट टीम के लिए कई मैच भी खेले। फिल्म शोले में निभाए गए सांबा के किरदार ने मैकमोहन को घर घर में पहचान दिला दी थी। आइए सुनते हैं उनका ये डायलॉग।
अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर?
पूरे 50,000।
सुना, पूरे 50,000।
Yes, and MacMahon was known for his villainous roles in films throughout the 1970s and 1980s. He appeared in over 200 films, including Dawn, Kars, Satte Pe Satta, Zanzeer, Rafu Chakkar, Shaan, Khoon Pasina, and Shole. And also, Akarshita, Jamini Roy passed away on this day in 1972. He was an Indian painter. He was honored by the Government of India, the award of Padma Bhushan in 1954. He remains one of the most famous pupils of Abhinandanath Tagore, another praised Indian artist and instructor. Roy's highly simplified, flattened-out style and reminiscent of European modern art was influenced by the bazaar paintings sold at Indian temples as talismans.
जामिनी रॉय अपनी निर्भीक रचनाओं में चटकीली रेखाओं, सपाट रंगों, जिसकी प्रेरणा परंपरागत कोलकाता से मिली थी, उसके लिए भी विख्यात जो है रही। और आज हिंदी के समाचार पत्र दैनिक आज के संस्थापक शिव प्रसाद गुप्त की पुण्यतिथि है। देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों को इनका समर्थन प्राप्त था। अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए भी शिव प्रसाद गुप्त ने कई बार जेल की सजा काटी। वे काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे। बनारस में भारत माता मंदिर का निर्माण भी इन्होंने ही कराया था।
Yes, and Dinanath Mangeshkar passed away on this day in 1942. He was an actor, Natya Sangeet musician and Hindustani classical vocalist who was active in Marathi theatre. He is the father of well-known singers Lata Mangeshkar, Asha Bhosle, Meena Khadikar and Usha Mangeshkar, as well as composer Riddhinath Mangeshkar. Let's listen in to a song by him.
नकले मदला कौन सती तू नकले मदला तू गंगे ची अथांग शुचिता तू गंगे ची अथांग शुचिता की जननी ची माया ममता की जननी ची माया ममता कौन सती तू नकले मदला।
आज फिल्म अभिनेत्री शम्मी की जयंती है। उनका मूल नाम नरगिस रबाड़ी था। उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। 1950 के दशक में शम्मी ने बागी, आग का दरिया, मुन्ना, रुखसाना, पहली झलक, लगन, बंदिश और मुसाफिर खाना, आजाद और दिल अपना, प्रीत पराई जैसी कई फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म से ही ये गीत।
मेरा न बन सके दे अपना हमें बना के दे थोड़ा सा दिल लगा के दे मेहनत से मुस्कुरा के दे मेरा न बन सके।
Yes, and M.S.K. Prasad was born on this day in 1975. He is a retired Indian cricketer. He was most recently the chief selector of the Indian national cricket team and led the selection of the Indian team for the 2019 Cricket World Cup. He played 6 test matches and 17 one-day internationals in his professional career.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और अभिषेक को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन करिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
Yes, thank you so much for being with us. So till the next time, this is from Akarshita and me, Abhishek Mukhopadhyay. Bye and
Namaskar. Namaskar.